नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के निकटता में रहकर अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं जिसे परमेश्वर आपके जीवन में दे रहा है और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मित्रों, आइए आज के अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले हम सब प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबको फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसमें से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रता पन दें ताकि प्रभु जब हम आपके वचन को सुने तो ये वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने वाला बन जाए, न केवल हम सुनने वाले लेकिन उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। इस समय हम में से प्रत्येक पर आपकी आशीष मांगते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि मूसा इसराइल की नई पीढ़ी को समझा रहा था कि वे अपने पितरों की तरह कोई भी भूल अर्थात गलती जो अविश्वास का है ना दोहराएं और परमेश्वर में विश्वास करके आगे बढ़ें। आज हम देखेंगे कि वह उनके सामने 10 आज्ञाओं को दोहरा रहा है। विषय है 10 आज्ञाओं का दोहराना। यह मूसा का दूसरा भाषण है और यह व्यवस्था का पुनरावलोकन है। यहाँ भी प्रेम और आज्ञा पालन पर बल दिया जा रहा है। मेरे मित्रों, अध्याय 5 से अध्याय 7 तक हम देखेंगे कि मूसा 10 आज्ञाओं को नए सिरे से दोहरा रहा है और उनकी व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जब सीनै पर्वत पर जब व्यवस्था का उच्चारण किया गया था तब सुनने वाली पीढ़ी जंगल में समाप्त हो गई। इस नई पीढ़ी के लिए व्यवस्था की पुनः व्याख्या अति आवश्यक थी, क्योंकि ये लोग अप्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे और वहां उनका सामना अन्य जातियों से होगा। मूसा जंगल प्रवास के 40 वर्षों के प्रकाश में 10 आज्ञाओं की व्याख्या करता है। मित्रों, आप कहेंगे कि यह निर्गमन अध्याय 20 की नकल है। जी हाँ, यह एक प्रकार से निर्गमन 20 की नकल है। इसका अर्थ यह है कि 10 आज्ञाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि उनका दोहराया जाना आवश्यक था, अर्थात यह अवश्य हो जाता है। वे आधारभूत नैतिक नियम भी हैं। आइए अब हम देखते हैं 10 आज्ञाओं का दोहराया जाना। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, मूसा ने सारे इसराइलियों को बुलवाकर कहा, हे इसराइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन के मनन में हमें 4 चरणों का पालन करना है। पहला चरण है सुनना, दूसरा सीखना अर्थात परमेश्वर की बातों से परिचित होना, तीसरा उसे मन में बसा लेना, जैसा दाऊद ने कहा भजन संहिता 119 उसके 11 में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, और अब चौथा है उस पर चलना। परमेश्वर का वचन आपके मन मस्तिष्क तक ही सीमित न रहे, वह आपके हाथ पांव तक आ जाए ताकि आप चल सकें। मेरे मित्रों, आप सुनते होंगे कि अनेक लोगों का कहना है कि वे 10 आज्ञाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं और वही उनका धर्म है। यदि आप उनसे प्रश्नोत्तर करें तो आपको पता चलेगा कि उनके कहने का अर्थ वास्तव में यह है कि उन्होंने 10 आज्ञाएं सुनकर उन्हें अच्छा माना है, परंतु जहां तक उन पर आचरण करने का प्रश्न है वे उन्हें कार्य रूप में नहीं लाए हैं। व्यवस्था वास्तव में साहुल सूत्र है जो दीवार की सीधाई को जांचती है। व्यवस्था एक दर्पण है जो मन को दर्शाता है। वह कार की बत्ती की नाए अंधकार में मार्ग दिखाती है कि कहां कहां उतार चढ़ाव है, मोड़ है या ब्रेकर है। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया है कि वह नैतिक नियमों के पालन द्वारा उद्धार नहीं दिलाता है। व्यवस्था में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु हमारे साथ बुराई है। पौलुस गलतियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद में लिखता है, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। मेरे मित्रों, व्यवस्था पालन से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था पालन में कोई सिद्ध नहीं हो सकता। गलातियों के पत्र 3 अध्याय उसके 19 पद में पौलुस लिखता है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मेरे मित्रों, यह तर्क सम्मत ही है कि पूछा जाए व्यवस्था देने का उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर है, वह अपराधों के कारण दी गई थी कि उस वंश के आने तक रहे, अर्थात मसीह के आने तक। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अस्थायी व्यवस्था थी जो मसीह के आने तक ही थी। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 24 और 25 पद में पौलुस कहता है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहें। व्यवस्था एक शिक्षक स्वरूप थी, एक सेवक जो हमें हाथ पकड़कर क्रूस के निकट ले आए, जैसे एक शिक्षक बच्चे को स्कूल लाता है। व्यवस्था हमें क्रूस के पास लाकर कहती है, हे बालक, तू पापी है और तुझे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। अतः व्यवस्था के आने का उद्देश्य यही है कि हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता का बोध करवाए। मेरे प्रिय मित्रों, व्यवस्था अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। व्यवस्था परमेश्वर की इच्छा प्रकट करती है। वह दर्शाती है कि आप और मैं परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। व्यवस्था प्रकट करती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यह वाक्य आप अपने जीवन में अपना लें और इसे आपको मसीह के निकट लाने दें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने तो होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा जो यहाँ आज के दिन जीवित हैं। मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र में उन्हें व्यवस्था नहीं दी थी। जंगल में भी होरे पर्वत तक वे आ गए, परंतु अब तक उन्हें व्यवस्था नहीं दी गई थी। वहां आकर उन्हें व्यवस्था दी गई। होरेब को ही सीनै पर्वत हम कहते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय उसके 4 से 6 पद में लिखा है, यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। मिस्र देश में इसराइल मूर्ति पूजा के मध्य था। वे एक लंबे युग तक मूर्ति पूजा के मध्य में रह रहे थे। और अब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 7 पद में, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। ध्यान दीजिए, मनुष्य का पहला पाप नास्तिक होना नहीं था। उसका पहला पाप था बहुदेववाद। वह अनेक देवताओं की पूजा करता था। उदाहरण स्वरूप, बाबुल का गुम्मट जहां वे सूर्य को बलि चढ़ाते थे, सूर्य और ग्रहों की पूजा करते थे। और मनुष्य का पहला कार्य था, जब वह परमेश्वर से दूर हुआ तो जल प्रलय के बाद वे बिजली और गर्जन की पूजा नहीं करते थे, वे सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य के सृष्टिकर्ता की नहीं। बहुदेववादी से ही परमेश्वर ने कहा, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। दाऊद के समय से पूर्व नास्तिकतावाद नहीं था। उससे पूर्व मनुष्य नास्तिक होने के लिए प्रकाशन के बंधन के बहुत निकट था। मेरे मित्रों, परमेश्वर का प्रकाशन उनकी स्मृति में अब भी था और परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करने वाला कोई नहीं था। दाऊद के युग में मूर्ख लोग अपने मन में सोचते थे कि परमेश्वर नहीं है, जिसे हम भजन संहिता 14 उसके 1 पद में पाते हैं। यहाँ मूर्ख से अर्थ है जिसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, अर्थात जो मनुष्य परमेश्वर का इनकार करे वह पागल है या सत्यनिष्ठ नहीं है। पहली आज्ञा परमेश्वर के अस्तित्व में अविश्वास का उल्लेख भी नहीं करती है। परमेश्वर की आज्ञा यह है कि अनेक देवी देवताओं की उपासना न करें, अर्थात उसे छोड़कर किसी दूसरे की उपासना न करना। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 8 से 10 पद में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। मेरे मित्रों, संसार में दो ही प्रकार के मनुष्य हैं, एक वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और दूसरे वे जो उससे घृणा करते हैं। वह उपासना के लिए किसी भी प्रकार की मूरत या मूरत को वर्जित करते समय विस्तृत निर्देश देता है। आगे उसने यह भी कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम करना। प्रभु यीशु ने कहा कि यह सबसे बड़ी आज्ञा है। इसके विपरीत परमेश्वर से घृणा करने वालों का समुदाय बहुत बड़ा है। मेरे मित्रों, आज अनेकों का दावा है कि वे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, परंतु पौलुस इफिसियों के पत्र 5 अध्याय उसके 5 पद में कहता है कि लालच मूर्ति पूजा है। आप जिसके अधीन है या जो भी वस्तु आपके और परमेश्वर के मध्य आ जाए वह आपका देवता है। क्या आप कहेंगे कि आपके पास कोई मूर्ति नहीं है? कुछ लोगों की बैंक की पुस्तक उनकी मूर्ति है, कुछ लोगों के लिए खेल मूर्ति पूजा है, तो कुछ के लिए बच्चे और नाती पोते, टीवी भी आपके लिए मूर्ति पूजा बन जाता है। आपके मन में जिस वस्तु का पहला स्थान हो वह आपकी मूर्ति पूजा है। हम व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। स्मरण रखें, पौलुस कहता है कि सब मनुष्य पापी हैं। उसने रोम के विश्वासियों को लिखा था 3 अध्याय उसके 14 पद में, उनका मुंह शाप और कड़वाहट से भरा है। मित्रों, आपको सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित होना है और आप देखेंगे कि मनुष्यों के मुंह में मीठे बोल की अपेक्षा गालियां अधिक हैं। परमेश्वर इससे घृणा करता है। परमेश्वर ने कहा, जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। मेरे मित्र, एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझे चुनौती देते हुए कहा कि यह कहना उचित नहीं है कि मनुष्य के मुंह में गालियां भरी हुई हैं। मैंने उससे कहा कि वह मेरे साथ कुछ खोज करे। मैंने उसे सलाह दी कि सड़क पर जाकर किसी को थप्पड़ मारे और सुने कि उसके मुंह से क्या निकलता है। आप जानते हैं मेरे मित्रों क्या निकलेगा? गालियां। प्रथम 3 आज्ञाएं नकारात्मक थी, अब एक सकारात्मक आज्ञा है जिसे हम व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 12 से 15 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। मेरे मित्रों, यह एक रोचक बात है कि सब्त के दिन अर्थात विश्राम के दिन की अपेक्षा सब आज्ञाएं नए नियम में दोहराई गई है। क्यों? क्योंकि सब्त की आज्ञा कलीसिया के लिए नहीं है। कलीसिया सप्ताह के पहले दिन आराधना करती थी क्योंकि वह दिन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का दिन था। सब्त के दिन का संबंध इसराइल राष्ट्र के साथ विशेष रूप से था। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा, निर्गमन 31 अध्याय के 13 पद में, तू इसराइलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। मेरे मित्रों, यह स्पष्ट है कि सब्त के दिन की आज्ञा इसराइल तक ही सीमित है। यह बड़ी विचित्र बात है कि निर्गमन में इसराइल से कहा गया था कि सब्त का दिन पवित्र रखें, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन सृजन कार्य करके 7वें दिन विश्राम किया था। परंतु यहाँ व्यवस्था विवरण में सब्त का दिन परमेश्वर और इसराइल के संबंधों की विशेषता का सूचक है। इसराइल को सब्त का पालन करने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि वे मिस्र में दास थे और परमेश्वर उन्हें अपने महान सामर्थ के द्वारा मुक्त कराकर लाया था। मेरे मित्रों, ये आज्ञाएं परमेश्वर के प्रति उत्तरदायित्व की हैं। अब मनुष्य के प्रति उत्तरदायित्व की आज्ञाएं हैं। हम व्यवस्था विवरण 5 उसके 16 पद में पढ़ते हैं, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। मेरे मित्रों, मुझे विश्वास है कि यह आज्ञा परमेश्वर और मनुष्य दोनों से संबंधित है। माता पिता बढ़ते हुए बच्चों के लिए परमेश्वर के स्थान पर होते हैं, क्योंकि वह हर बात में माता पिता की ओर निहारता है। होना भी ऐसा ही चाहिए। नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद में सुलेमान लिखता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। जब बच्चे छोटे हों तो माता पिता को परमेश्वर के स्थान पर खड़ा होना है। मेरे मित्रों, अब इसराइल प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाला है, अतः उसे अपने माता पिता का आदर करना है। मेरे मित्रों, जो राष्ट्र इस आज्ञा को नहीं मानता है उसे आशीषें नहीं मिलती हैं। यद्यपि हर एक माता या पिता इस आज्ञा के योग्य नहीं है, परमेश्वर माता पिता से भी कुछ कहता है। देखिए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 4 पद में पौलुस लिखता है, अपने बच्चों को रिझ ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मेरे मित्रों, ये दोनों आज्ञाएं साथ साथ चलती हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, तू हत्या न करना। यहाँ पर हत्या शब्द का मूल अर्थ है योजना बनाकर हत्या करना या क्रोध में आकर वैयक्तिक बदले की भावना से हत्या करना। इसका युद्ध में हत्या करने से तात्पर्य नहीं है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर इसराइल को आदेश देगा कि वे उस देश में उनके वैरियों का सर्वनाश कर दें। यह आज्ञा युद्ध में सैनिकों को हत्या करने के निर्देश से संबंधित नहीं है। वियतनाम के युद्ध के समय एक युवक ने कहा, वह युद्ध में जाना नहीं चाहता था क्योंकि वह किसी से कुपित नहीं था और वह हत्या करना नहीं चाहता था। किसी ने उससे कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि वह वहां किसी से अप्रसन्न नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो वह उस व्यक्ति को खोजकर मारेगा और हत्या का दोषी ठहरेगा। हम इस विषय अधिक चर्चा उस समय करेंगे जब हम सरकार के प्रति अपने उत्तरदायित्व की चर्चा करेंगे। नवी आज्ञा युद्ध करते हुए सैनिक के लिए नहीं है। यहाँ पर हम फिर पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 18 पद में, तू व्यभिचार न करना। मेरे मित्रों, आज का युग व्यभिचार से ग्रस्त मानव का है। विज्ञापन की विषय शक्ति से पूर्ण है। कदम कदम पर व्यभिचार है, अतः परमेश्वर की यह आज्ञा आज भी प्रभावी है। यह पाप हमारे राष्ट्र को नाश कर रहा है। व्यवस्था विवरण 5 उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं, तू चोरी न करना। आप कहेंगे कि आपने कभी चोरी नहीं की, परंतु क्या आपके मन में भी ऐसा विचार कभी नहीं आया? प्रभु यीशु ने कहा, हमारे मन के विचार पाप के होते हैं। मन में घृणा हत्या का अपराध है। मन में काम वासना व्यविचार का अपराध है। व्यवस्था विवरण 5 उसके 20 और 21 पद में लिखा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का और न उसकी दासी का, न उसके बैल व गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। मेरे मित्रों, लालच न करने की आज्ञा से ही विदित है कि किसी की संपत्ति की लालसा करना ही पाप है। अब मूसा परमेश्वर से व्यवस्था प्राप्त करते समय के अद्भुत अनुभव का वर्णन करता है कि यह नई पीढ़ी उस दृश्य की कल्पना करे। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 23 से 26 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना है। आज हमने देख लिया है कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग में से हम भस्म हो जाएंगे और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारी नाई जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। मेरे प्रिय मित्रों, वह दृश्य ऐसा भयावह था कि उन्होंने मूसा को परमेश्वर के पास व्यवस्था प्राप्त करने भेजा और कहा कि वह आकर उन्हें व्यवस्था सुनाए। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 27 में लिखा है, इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले, फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। इसराइल ने व्यवस्था पालन की प्रतिज्ञा की परंतु निभाई नहीं। अब अपने लोगों के लिए परमेश्वर के मन की पुकार को सुने। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 29 पद में, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। मेरे मित्रों, उनकी समस्या यही थी कि वे व्यवस्था पालन में चूक गए। वे प्रतिज्ञा के देश में रहते हुए अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठा रहे थे। व्यवस्था उनके लिए और उस देश के लिए थी, परंतु वे व्यवस्था के अनुसार नहीं चले। यह हमारे लिए एक सबक है। आप और मैं भी उनकी न्याय व्यवस्था पालन से चूक गए हैं। मेरे प्रिय मित्रों, व्यवस्था हमारे सामने एक दर्पण स्वरूप है। हमें उसमें देखना है और वह हम में से प्रत्येक को दिखाएगी कि हम पापी हैं। दर्पण हमारे चेहरे के दाग को प्रकट तो करता है परंतु उसे साफ नहीं कर सकता। इसी प्रकार व्यवस्था हमारे पाप को तो प्रकट करती है परंतु हमें पाप मुक्त नहीं कर सकती। दर्पण किसी भी कीमत पर चेहरे के दाग को मिटा नहीं सकता। हमें नल पर आकर ही उसे धोना है। व्यवस्था हमें शोधन के लिए प्रेरित करती है। वह हमें मसीह यीशु के पास ले आती है। परमेश्वर पुत्र यीशु का लहू हमें धोकर साफ ही नहीं करता, वरन लगातार धोता रहता है। लहू का एक सोता है जो इमानुएल से बहता है और पापी नहाकर उसमें पाप के दाग से मुक्त होते हैं। मेरे मित्रों, यहां महत्वपूर्ण बात 10 आज्ञाएं स्वीकार करने और उसके प्रति अपने विचार प्रकट करने की नहीं है, परंतु यह कि क्या आप उन पर आचरण कर रहे हैं। मेरे मित्रों, यदि आप ईमानदारी से कहें तो आप उसमें खरे नहीं उतरते हैं। इसका अर्थ है कि आपको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यशाया की पुस्तक 1 अध्याय उसके 18 पद में परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे और चाहे वे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे मित्रों, जब आप मसीह के पास आ जाते हैं तब वह आपको क्षमा करके सब आधार्मिकता से शुद्ध करता है, तब आप उसके समक्ष निष्कलंक खड़े होते हैं। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप अपने पापों को मान लेते हैं तो आपके पाप कितने भी भयानक या बड़े क्यों ना हो, हो सकता है कि आपने हत्या किया है, व्यभिचार किया है, चोरी किया है और ऐसे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कार्य किए हैं जिसे लोग नहीं जानते हैं। आपके प्रिय और आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपके सारे पापों को जानता है, वो है परमेश्वर। और वह चाहता है कि आप इन सारे पापों को उसके सामने में स्वीकार कर लें, मान लें और उससे अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और क्षमा मांगे, क्योंकि वह आपके पापों को क्षमा करने में सक्षम है, वह आपको इससे छुटकारा देने में सक्षम है। इसीलिए यशायाह नबी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों और अरगवानी रंग के हों, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। वह चाहता है कि आप पाप से मुक्ति पाएं। क्या आप चाहते हैं कि आप इससे छुटकारा पाएं? यदि आपका जीवन पापमय है और आप इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं या इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आज प्रभु के सामने आए। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आज ही परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। प्रभु अवश्य आपको क्षमा करेंगे और आपके जीवन में शांति और आनंद को प्रदान करेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि निश्चय ही आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में एक विशेष निर्णय लिया है और उसके अनुसार से आप परमेश्वर के आनंद को अवश्य प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जिंदगी।